भगवान कृष्ण की कथा में आपकी नैष्ठिक रति है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपने भोजन और पानी दोनों बंद कर दिया, आप कथा के समय में चित्त आपका कर्म नहीं किया, एकदम स्थिर होकर के मानो उसको पी गए, थोड़ी सी कथा बंद होने पर आपके प्राण मानो चले जाते हैं, इसलिए आपके अंदर में निश्चित गति विशेष करके संदक प्रवृत्त तो संदक सम्यक रूप से व्यवस्थित आपकी बुद्धि है। फिर आनंद वास्तव कथा के लिए जो प्रश्न है वो पुरुषान किन सुना की जो कथा का प्रश्न करता है, कथा के लिए प्रश्न करता है, महाराज आप कृष्ण की लीला कथाओं को करें, उन्होंने क्या क्या लीला है, भगवत संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो तीन पुरुषों को पवित्र कर देता है। कौन तीन पुरुष? जो प्रश्न करता है, जो उत्तर देता है और जो सुनता है, ये तीन पुरुष, श्रोता वक्ता तीनों। जैसे पाद शरीरम तथा आपके चरण कमलों की जैसे चरणामृत है अथवा आपके चरणों से निकली हुई गंगा, जैसे गंगा ऊपर नीचे और पृथ्वी तीनों लोगों को पवित्र कर देता है, अथवा जिन्होंने लाया किसी ने, जिन लोगों ने प्रेरणा की जाने की सला पाना जिससे और जिनको उनसे संपर्क कराया जगत के लोग और जिनको पानी कपड़ा सभी वह बन, अथवा पाद शरीरम यथा चालकान की जो सेवा की जाती है, तो जो पानी लाया गंगा जमुना का या कोई पवित्र पानी और किसी ने उसको स्नान कराया और किन्हीं ने उनका पानी कर्णोदक लिया, जो पानी लाया जिसने ठाकुर जी से स्नान कराया और जो जो उस पानी को ग्रहण किया वो सभी लोग पवित्र बन जाते हैं, ठीक ऐसे ही ये कथाएं प्रश्नकर्ता की वजह से वो आई हरी कथा, जिन्होंने कहा वो हुआ और उसको जो सुना वो तीनों पुरुषों को उद्धार। सनातन गोस्वामी की विशेष इसमें टीकाएं श्रोता और वक्ता समजातीय होना चाहिए, तब उस कथा में रस आता है। यदि श्रोता उत्तम कोटि का हो, वक्ता और श्रोता निम्न कोटि का हो, तो उसमें रस आता नहीं, उसकी बात को नहीं समझ सकेगा, उल्टा ग्रहण कर लेगा, अथवा वक्ता हुआ उच्च कनिष्ठ हुआ और श्रोता हुआ उत्तम तो उसको अच्छा नहीं जा ऊपर नहीं तो ऊपर से चला जाएगा, और यदि मान लिया कि रुचिकर नहीं हुआ उसको और नहीं चला गया तो वो ठीक से उसमें कोई प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आनंद ही नहीं आता, गुड़ कथाएं नहीं होंगी। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों का समझाती है एक समान स्वरूप अधिकार स्वरूप ऐसा हो तो बहुत ही सुंदर है, तब उस कथाओं के लिए शुरू किया है। जैसे महाप्रभु थे साढ़े तीन आदमियों को लेकर के ही गोपीजा में बातचीत करते, विशेष करके दो स्वरूप दामोदर, क्यों उनके कैटेगरी के महाप्रभु राधिका जी का भाव नहीं है और वो रहे ललिता अमिता का, इसलिए उन्होंने और तीसरे को कल नहीं सुनने दिया। किंतु हाँ उस कथा को महाप्रभु जी पूछ रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं परस्पर, और उसका कहीं भी गया ना आवाज हमारे रूप गोस्वामी है और उनके कानून में आएगा कि नहीं ये पता आएगी और उसके माध्यम से हम लोग सब पहुंच जाते इस तरह से व्यवस्था कर लेते तो दोनों का एक भाव होना नहीं तो यदि एक अधिकार के नहीं हुए तो थोड़ा सा यदि परिचित ने पूछ लिया ये कृष्ण तो भगवान है उन्होंने ऐसा गर्भित कर्म लज्जा कर घृणास्पद कर्म क्यों दिया के गोपियों को नंगा किया और अकेले में उनके साथ में राज किया ये क्या उनके साथ में जो नहीं करना चाहिए वो कर्म किए जिसको सुन करके वो बड़े बिगड़ गए और उनका भावावेश यदि वो प्रश्न नहीं होता तो हो सकता था वो राजलीला के बाद में और भी कुछ करते और कथाएं किसी दूसरी होती एक थोड़ा सा विचार की या लोगों को दे करके देवता कोई उसी स्थिति का गोपियों के ये सब वर्णन कर रहा है और उसमें कोई आकर के कनिष्ठ अधिकारी पूछ रहे गोपियों को उन्होंने नंगा करके क्यों बुलाया क्यों देखा और वक्ता को कहां ऊपर से नीचे उतरना कहां आना पड़ेगा लौकिक नीति में आना पड़ेगा जहां पर नीति का स्थान ही नहीं है वो नीति से बहुत ऊपर है और प्राकृतिक वहां पर प्रभाव है वहां पर नीचे है बस उनकी कथा में इसलिए दोनों का एक होना चाहिए इसलिए इसमें श्लोक में कहा गया जैसे सुखदेव गोस्वामी है वक्ता श्रोता भी वैसे पहले प्रश्नकर्ता वैसे और तब वक्ता भी वैसे और फिर श्रोता भी वैसे श्रोता ने मैंने परिचित मारा प्रश्नकर्ता और श्रोता दोनों और वक्ता है सुखदेव गोस्वामी के संबंध में आप जानते ही हैं कि कौन है जागतिक दृष्टि से भी गया के बाद जन्म के अवधि परमहंस सुनामी और प्रिया जी के जो सुख है वो तो अभी छोड़ हमारा परिचित सुखदेव के गुण से आकृष्ट होकर के उनके गुणों को बताया ये कैसा ये वक्ता कैसे एक तो भगवत तत्व को जानने वाले लीला कथाओं को संपूर्ण रूप से जानने वाले भूत भविष्य तत्व को जानने वाले जीव का बंधन मोक्ष कैसे होता है ये भी जानने वाले समस्त शास्त्रों का तात्पर्य उनको समझना है एक तरफ की है जीवन मुक्त है अब उन्होंने जबकि परिचित महाराज जी ने इनको गुणों का वर्णन किया तो सुखदेव गोस्वामी ने भी परिचित महाराज के गुण से आकृष्ट होकर के उनको इसी श्लोक में धन्यवाद दे रहे इतनी सुंदर तुमने कथा आरंभ भी तुमने प्रश्न किया इतना सुंदर इसलिए देखो वासुदेव कथा प्रश्न वासुदेव कथा का भी प्रश्न है वो तीन पुरुषों को उद्धार कर सकता है और उसका उत्तर कोई दे वक्ता तो फिर क्या होगा आराय समझ में भी प्रश्न से ही तीनों पुलों का तीनों लोगों का उद्धार होगा और यदि उसका समझ पूर्वक यदि कोई वक्ता हो और बोले इस विषय पर तो नजरे क्या होगा और जो कोई उनके भावों को संयम करके अत्यंत आनंद के साथ ही कथाओं का रसा कार्य जो करते हैं उनकी क्या होगी उनकी गति परिचित महाराज इसलिए प्रश्न करने वाले के लिए अभी काफी कथा वाले के लिए अभी कुछ नहीं था प्रश्न का ही इतना महत्व है इसीलिए कहा गया क्या वो गीता में जो सब विधि कड़ी बातें में परिप्रश नहीं इसीलिए कहा प्रश्न उदित नहीं हो कथा के लिए प्रश्न नहीं करे मौन हो करके रहे ये उचित नहीं गुरु के पास में तो मौन रहना ही नहीं कथा बात तो की हम मौन नहीं रहने थे, बीच बीच में प्रश्न नहीं करने से श्रोता भी सो जाता है और वक्ता भी सो जाता है, श्रोता भी सो जाता है। इनको कुछ तो समझ में आता नहीं क्या कर, और उस पर भी किसी को ईर्ष्या हो ये प्रश्न कर रहा है, इनको बताया जा रहा है तो क्यों बताया जा रहा है, ईर्ष्या होती है। खत्म हो दोनों, इसका रसा स्वागत कैसे करेंगे उसके लिए आगे कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परिस्थिति को पढ़े, हे राजसी सप्तम एक संबोधन किया। इस श्लोक में दूसरे श्लोक में कह रहे जतोस्वधर्म शीलस्य नितरां मुनि सप्तम पत्रां तेन अवतीर्ण विष्णु विद्यान। हे मुनि सप्तम कौन सा रहा, हे मुनि सप्तम मुनियों में सबसे श्रेष्ठ जो आप हैं, जदुवंश में अंश के साथ में अवतीर्ण जो भगवान है उनके विद्यों को उनके प्रभाव को उनकी लीला कथाओं को आप अंश बलदेव के चरित्र में पूरा तो संभव नहीं है, तो अंश रूप में ही आप बोलिए। ये प्रश्न क्या है कहते हैं उनको, तो उन्होंने मुनि सप्तम कहा और उन्होंने कहा क्या
राजसी सप्तम,
राजसी सप्तम जैसा उन्होंने कहा उनका पुनः करके और श्रोता भी उनको ऐसे कहा, वक्ता कह रहा है श्रोता को राजसी सप्तम। ओ तुम्हारी सम्यक व्यवस्थो बुद्धि पव, हे राजसी सप्तम भगवान की लीला कथाओं के श्रवण में तुम्हारी सम्यक प्रकार से व्यवसात्मिका बुद्धि है, जैसे गीता में भगवान ने बताया। जो लोग भगवान की कथा में भगवान के नाम में भगवान के भजन में जिनकी एकांतिक निष्ठा है यही सुंदर व्यवसाय है, एकांतिक हो। और जो अव्यवसायीन बुद्ध अव्यवसायीन अनंत शाखा अनंत उनकी बुद्धि में शाखाएं हो क्या बुद्धि में शाखा होती है समर्थन करूंगा। कृष्ण भजन का प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे करूंगा, मंदिर बनाऊंगा, पुस्तकें छापूंगा और सोने का मंदिर बनाऊंगा और सब लोगों को हरी कथा करूंगा, सब लोग प्रतिष्ठा देंगे जगत में, मैं एक सर्वोच्च रहने के लिए सुंदर अटैच बाथरूम इत्यादि युक्त सुंदर ब्रह्मचारी लोगों के लिए गाय पालूंगा, उनको रोज सवेरे शाम एक एक पौआ या आधा आधा किलो दूध दूंगा, रामी मलाई छेना ले आऊंगा, सबको संतुष्ट रखूंगा, डॉक्टरों की व्यवस्था रहेगी, सब प्रकार की सुंदर व्यवस्था। ये क्या है बुद्ध व्यवस्था अनंत शाखा, ये तो अच्छी है बात और ना जाने क्या क्या इसमें अनंत शाखा है। इसलिए बुद्धि जब एकाग्र हो जाए ना, इसी को कहते हैं निष्ठा, निष्ठा उसमें हम पुरुष को दूर करके भावों को और उसमें स्थिर हो जाए, ये अलग खराब है, ये नहीं हमको दूर हो जाए तो बुद्धि ऐसे निश्चित हो, अब हमको कुछ नहीं चाहिए बस ये ही चाहिए क्या कृष्ण का भजन, अभी बुद्धि निश्चित नहीं हुई कैसी तुमको भक्ति चाहिए कृष्ण, कौन से ब्रजवासी की तरह हमें चाहिए, कहें जसोदा मैया जैसे, नंद बाबा जैसे, गोपियों जैसी हो गई ना, नहीं गोपियों का कहने से भी नहीं होगा, हम कहने रूप गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, महाप्रभु के परिकरों को जैसे रीति गए, बस ऐसे ही एक अंग ये देवता अनसरा से ये नहीं हो सकता। इसलिए ये कहते हैं तुम्हारी बुद्धि सब प्रकार से सम्यक प्रकार है व्यवस्थित हो गई है, अर्थात प्राचीन तत्व और कर्तव्य के निर्णय में समर्थ हुई है। मुझको क्या करना है, संसार नष्ट जितना जो कुछ हम संग्रह कर रहे हैं कोई भी चीज संग में नहीं जाएगी, किंतु हाँ एक बुरी चीज संग जाएगी। मान ला कि अर्थ संग्रह की आस्था तो नहीं गया, किंतु अर्थ संग्रह की पिपाशा उसके प्रति आसक्ति ये गई और तुम्हारा संस्कार बदल गया। बल नहीं होता, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं गया, वो बद अवस्था जैसी है गई, संस्कार गया जो तुम्हारा और कुछ नहीं गया। इसलिए संसार ऐसा, इसलिए हम कैसा प्रयास करेंगे कृष्ण में एकांतिक दुख हो हो जाए, उनकी कथा स्मरण में, उनके लीला स्मरण में, उनका नाम कीर्तन करने में, उनके लीला के स्थानों में जाने में, उनके प्रति शौक स्तुति इत्यादि जो है नौधा भक्ति कर। इसलिए गीता ने कहा देवता ने कहा बुद्धि रे केह एक सुनंदन बहुत साक्षा ही अनंत बुद्धयो अव्यवसायिना। अर्जुन व्यवसात्मिका बुद्धि एक निश्चित हो किसी को व्यवसात्मिका बुद्धि और अव्यवसायी लोग हैं अनर्थ युक्त व्यक्ति जो है उनकी बुद्धि कैसी होती है, अनंत प्रकार की होती है, बहु आमांतर के लिए अभी बुद्धि स्थिर नहीं हुई है, अभी स्थिर भी नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए, अभी संसार में रहना है, संसार में नहीं रहना है, संसार में यदि रहेंगे तो भजन नहीं हो और संसार कर्म करेंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि भजन करेंगे। बहुत से लोग तो संसार में रह सकते भगवान को पाया, पांचों पांडवों ने राजा जनक ने राम के बहुत से भक्तों ने सुग्रीव इत्यादि करने ये तो बृहद तरह का देख पाए, किंतु शास्त्र में चाहिए ये जल्दी भी आ गए। इसीलिए नारद सुखदेव गोस्वामी जी महाप्रभु जी और जो ऋषि महर्षि जब हमारे सब छोड़ करके गए फिर जब कहते हैं कि अरे भाई चले तो गए बात तो ठीक है, तो कोई कोई रास्ते के बाद ही कुछ लोग तो फिर वहां से भी जीत गए, क्या कर बहुत तरह की भविष्य बातें आती हैं। यदि मान लिया कि मैं भजन नहीं कर सका और कोई हमको कभी दे जीतने वाला है अंत में तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसे अभी से ही घर रुपया पैसा कुछ सुरक्षित रखा जाए, जो काम आएगा आप निश्चित रूप में बैठ सकते भजन कर। तो फिर उन लोगों ने त्याग क्यों किए, इसी उधेर भूम में रह जाते तरह तरह। इसलिए कहते हैं जागतिक बुद्धि अव्यवसायिक है, जागतिक जो बुद्धियां हैं वो कैसी है अव्यवसाय और परतत्व में निष्ठा है, इसको कहते हैं अविचल। इनको ऐसी निष्ठा कैसे होगी, कैसे होगी, ऐसा जो व्यक्ति है उसका काम भक्ति किस चीज से होती है, विद्या से होती है, न धन से होता है, न किसी और संसारिक अनुकूल परिस्थितियों से होता है, कैसे होगी कैसे ये भक्ति होगी, बिना ज्ञान के भक्ति कैसे होगी और बिना पढ़े हुए ज्ञान कैसे होगा, और बिना संस्कृत के ज्ञान से कैसे होगा, कैसे होगा? और ज्ञान करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है,
बिना पैसे के
वो भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि पैसा ही सबका मूल है, इसे पैसे संग्रह करो, इसके बाद में अध्यापक ठीक करो, इसके बाद में पढ़ो लिखो, अंत में ठीक नयमात्मा प्रवचन न मे धया भूंगा साधु संघ का जन्म मूल है जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था से भक्ति करे, अपनी ममता कुछ में लगाए और कुछ में जाएगा, जो कुछ हमने सीख करके आकर के दया हुआ उसको लगाना, वही बड़ा करके ले जाएगी भगवान। और जितने कुछ और संग्रह करके तब से भक्ति करेंगे ये शाखा ही अनंत उसमें कोई काम ना बात ना करते उसे विकसित करते, इसलिए जितना जो है उसी से भक्ति करें, भक्ति ही भक्ति को बढ़ाए। भक्त्या भक्ति से ही भक्ति हो और किसी चीज से नहीं हो। हृदय में प्रेम कहां से लाएगा ये, इसलिए पढ़ते 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 इस जीव को अपने आप सबको ज्ञान होगा, कथाओं से सुनने से अपने आप सबको ज्ञान होगा। और सुखदेव गोस्वामी ने व्याकरण पर या कोई शास्त्र पढ़ा जन्मते ही तो वो चले गए जंगल में, पूर्वजान का संस्कार भी तो चाहिए, ये संस्कार किसी सबसे बनता है साधु संघ से हरी कथा, यही हमारी मूल पूंजी है, इसके द्वारा भक्ति हो। सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रश्न प्रस्थित महाराज जी का प्रश्न सुन करके बोले, और तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थात्मिका है क्या, तुमने राजभवन छोड़ दिया, राजा की पगड़ी या मुकुट सब विषय छोड़ दिए और एक धोती पहनकर साधारण गंगा के तट पर गंगा की तरफ में मुख करके बैठ, अब न खाऊंगा न पीऊंगा न कोई चिंतन करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, बस प्रभु के लिए प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारा कल्याण करते हो। और सोची रहते थे भगवान के शरणागत होने से कुछ देव सकते और सब ऋषियों को साथ ही साथ प्रश्न किया होने लग गया। उन्होंने कहा कि अब हरि कथा सुनने से अतिरिक्त कुछ भी नहीं करूंगा, और वैसा ही प्रश्न कर बीच बीच में जब उनकी एक कथा समाप्त होती दूसरा प्रश्न तैयार, एक साथ में 10-9 प्रश्न कर, इसके बाद में जब वो एक एक विषय समाप्त था और फिर प्रश्न कर कुछ अबोध बन रहे हैं, ये कहते हैं कि अबोध नहीं है सुनने को सर, इसकी बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई है सम्यक व्यवसाय हो गया है, एक निष्ठा हुई साधारण व्यक्ति है। क्यों गीता में ये जो कहा गया है व्यवसात्मिका बुद्धि रेखे पर, इसकी कुछ विशेषता है, इसकी विवेचना करना पर ऐसा प्रतीत होता है नाना प्रकार के विषय निष्ठ बुद्धि को गीता में अव्यवसात्मिका और कृष्ण में एक चित्त लगने को कहते हैं व्यवसात्मिका। सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखो कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके और जितनी लौकिक बुद्धि है कर्म योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय जो कुछ है ये सब क्या है अव्यवसाय, और भगवान वासुदेव के लीला कथाओं में चित्त का लग जाना यही केवल मात्र व्यवसाय होता है। मृत्यु सब मृत्यु आपनोति जयह नानेव पश्यति, उपनिषदों में ऐसा कहा गया है जो व्यक्ति प्राप्त नाना प्रकार की चिंताओं में रह करके तरह तरह की चिंता करता है, कामना करता है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं, व्यवसायिक नहीं, और अंत में उस संसार को ही प्राप्त होता है। और जिसकी कृष्ण में एक लीला कथा में निष्ठा है, नाम में निष्ठा है, कथाओं में निष्ठा है, वो क्या कृष्ण को ही प्राप्त होता है। ये स्थिति का वचन है। सरती शोक मोह आत्मविद, आत्मविद शोक मोह भय इत्यादि को पार कर जाता है। लीला कथाओं का फल भी बतलाया है, तो क्या है अपने आप हरिकथा महान मुखर को मधुबी चरित्र पीयूष अशेष कविता परिता कमन साधे जीवंत निप ग्रहण करना, जो निप ग्रहण करना मैंने अत्यंत आसक्ति के साथ में पान करते हैं, उनको शोक मोह भय भूख त्याग सब दूर हो जाता है और अंत में भगवान के साथ इंद्र लीला के प्रति एक निश्चित।